आज हम जापान के संदर्भ में बुलाए गए वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करेंगे, जो 1921 ईस्वी में बुलाई गई थी। वर्साय की संधि के बाद पूर्वी एशिया की राजनीति में पुनः उथल पुथल शुरू हुआ। इस क्षेत्र में जापान और अमेरिका जैसे दो साम्राज्यवादी राष्ट्रों के हित आपस में टकरा रहे थे। 1894 और 95 ईस्वी के चीन जापान युद्ध के साथ जापानी साम्राज्यवाद का पहला चरण पूरा हुआ था। शांति सम्मेलन में अमेरिका के दबाव के कारण जापान की अनेक मांगें पूरी नहीं हो सकी थी। जापान का यह विश्वास था कि जब तक वह अपनी सैन्य शक्ति की वृद्धि नहीं कर लेता है, पश्चिम के साम्राज्यवादी राष्ट्र उसकी अवहेलना करते रहेंगे। जापान अमेरिका को अपना प्रबल शत्रु मानता था और उससे लोहा लेने के लिए वह तैयारी कर रहा था। पूर्वी एशिया में अमेरिका और जापान के संबंध खराब होने का मुख्य कारण यह था कि इस क्षेत्र में जापान की शक्ति काफी बढ़ रही थी, जो अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ही जापान ने चीन के समक्ष 21 मांगे रखी थी। इसका उद्देश्य चीन में जापान की स्थिति को सुरक्षित और मजबूत बनाना थी। यदि चीन जापान की मांगों को स्वीकार कर लेता तो उसकी स्थिति एक संरक्षित राज्य की हो जाती। इस समय अमेरिका पूर्वी एशिया में खुले दरवाजा की नीति का अनुसरण कर रहा था, इसलिए उसने जापानी मांगों का विरोध किया। अमेरिका किसी ऐसे समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था जिससे उसके अधिकारों तथा चीन की राजनीतिक अथवा प्रादेशिक अखंडता का हनन होता हो। कुछ दिनों के बाद 2 नवंबर 1917 ईस्वी को जापान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार अमेरिका ने चीन में जापान के विशेष स्वार्थ को स्वीकार कर लिया। फिर अमेरिका और जापान के बीच मनमुटाव का अंत फिर भी नहीं हुआ। जापान चीन तथा प्रशांत महासागर में जर्मनी के इलाकों तथा उपनिवेशों पर अधिकार करना चाहता था। अमेरिका इसके पक्ष में नहीं था। जापान और अमेरिका के बीच मतभेद का एक मुख्य कारण प्रशांत महासागर में स्थित टाप द्वीप भी था। दोनों देशों के बीच मतभेद का दूसरा कारण 1902 ईस्वी का आंग्ल जापानी संधि थी। इस संधि के द्वारा इंग्लैंड को युद्ध की स्थिति में सहायता देने का वचन दिया था। अमेरिका को भय था यदि जापान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ गया तो अमेरिका के विरुद्ध जापान की सहायता इंग्लैंड करेगा। प्रशांत महासागर पर प्रभुत्व कायम करने के मार्ग में जापान अमेरिका को अपना प्रबल विरोधी मानता था, अतः वह अमेरिका का मुकाबला करने के लिए अपनी नाविक शक्ति में वृद्धि करना चाहता था। जापान के इस प्रयास से अमेरिकी शासक बेचैन हो गए, अतः इस नौ सैनिक प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने तथा पूर्वी एशिया की अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए 11 अगस्त 1921 ईस्वी को वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, चीन, बेल्जियम, हॉलैंड और पुर्तगाल ने भाग लिया। वाशिंगटन सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों के बीच अनेक समझौते हुए। इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, इटली और अमेरिका के बीच नौ सैनिक संधि हुई। इस संधि का उद्देश्य नाविक होर का अंत करना था। अगले 10 वर्षों के लिए विविध राष्ट्रों के जंगी जहाजों का अनुपात इस प्रकार तय किया गया। अमेरिका 5, इंग्लैंड 5, जापान 3, फ्रांस 1.67 और इटली 1.67। छोटे जहाजों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका, क्योंकि इंग्लैंड का तर्क था विश्व में फैले हुए ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए छोटे जंगी जहाजों के निर्माण पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण करना उसके लिए संभव नहीं है। वह पनडुब्बियों के प्रयोग को बंद करना चाहता था, लेकिन फ्रांस ने इस प्रकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। नौसैनिक समझौता के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फ्रांस और इटली की नाविक शक्ति में समानता स्वीकार कर ली गई थी, किंतु फ्रांस को इस निर्णय से आपत्ति थी। उसकी मांग थी कि फ्रांस की नाविक शक्ति इटली की शक्ति से अधिक हो। इस विषय पर कोई समझौता नहीं हो सका। दूसरी कठिनाई जापान के संबंध में थी। उसने अमेरिका और इंग्लैंड के दबाव के कारण अपने जहाजों की संख्या में कमी करना स्वीकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त उसे चीन को भी अनेक राजनीतिक सुविधाएं देनी पड़ी थी। जापान को अपनी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। प्रोफेसर ईएच कार के अनुसार जापान इसमें अपनी प्रतिष्ठा की हानि समझता था और आगे चलकर इस समझौते को भंग करना उसके लिए स्वाभाविक था। 13 दिसंबर 1921 ईस्वी को जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस के बीच चतुर्राष्ट्र संधि हुई। इसके अनुसार यह तय किया गया कि संधि करने वाले राष्ट्र प्रशांत महासागर में स्थित एक दूसरे के अधिकृत प्रदेशों में प्राप्त अधिकारों को स्वीकार करेंगे और अधिकारों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर आपस में बातचीत द्वारा समस्या को सुलझाएंगे। इस संधि के परिणाम स्वरूप युद्धोत्तर काल में अमेरिका पहली बार सामान्य हित के मामलों पर अन्य बड़े राष्ट्रों से कुछ बातों में परामर्श करने और अपना सहयोग देने को तैयार हुआ। तीसरी संधि नौराष्ट्र संधि कहलाती है। इसके अनुसार सभी राष्ट्रों ने चीन की राष्ट्रीय स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को सम्मान देने का वचन दिया। साथ ही उन्होंने वादा किया कि वे चीन में विशेषाधिकार प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। चीन में खुले दरवाजे की नीति को कायम रखा गया। पश्चिमी राष्ट्रों के बहुत से विशेषाधिकार कायम रहे। यद्यपि इस संधि के द्वारा जापान के प्रसार को रोकने का प्रयास किया गया था, फिर भी इस संधि में अनेक कमियां थीं। इस संधि को पालन कराने के लिए कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं की गई थी और इसका पालन मुख्यतः महाशक्तियों की सद्भावना पर निर्भर करता था। यह सामूहिक सुरक्षा का समझौता नहीं था, बल्कि महाशक्तियों द्वारा कुछ अधिकार छोड़ने की घोषणा मात्र थी। वाशिंगटन सम्मेलन में सम्मिलित 9 राष्ट्रों के बीच एक और संधि हुई। इसके द्वारा चीन को अपने यहाँ आने वाली वस्तुओं पर कर लगाने के अधिकार दिए गए। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली और चीन के बीच एक संधि भी हुई। इसके द्वारा जर्मनी के समुद्री तटों को आपस में बांटने का फैसला किया गया। एक दूसरी चतुर्राष्ट्र संधि हुई, जिसके अनुसार इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस तथा जापान ने प्रशांत महासागर में स्थित टापुओं में विभिन्न शक्तियों के अधिकारों के सम्मान और सुरक्षा का निश्चय किया। टाप द्वीप के संबंध में अमेरिका और जापान के बीच एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार टाप द्वीप में अमेरिका को जापान के समान अधिकार एवं स्वतंत्र प्रवेश का अधिकार दिया गया। सम्मेलन का महत्व। पूर्वी एशिया के इतिहास में वाशिंगटन सम्मेलन का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके द्वारा इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया था। सम्मेलन के 2 मुख्य उद्देश्य थे, इंग्लैंड और अमेरिका के नौसैनिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना तथा जापान की शक्ति पर अंकुश लगाना ताकि सभी देशों को चीन में व्यापार करने का समान अधिकार मिले। नौसैनिक संधि से पहले उद्देश्य को तथा चतुराष्ट्र संधि ने दूसरे उद्देश्य को पूरा किया। सम्मेलन के परिणाम स्वरूप प्रशांत महासागर में चीन की प्रादेशिक अखंडता की तथा अमेरिकी नौसैनिक प्रभुता को चुनौती देने वाला जापानी संकट दूर हो गया। महाशक्तियों ने संयुक्त रूप से चीन की प्रादेशिक अखंडता एवं राजनैतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखने का समझौता किया। इससे चीन को अपनी स्थिति सुधारने का मौका मिला। सम्मेलन ने आंग्ल जापानी संधि को समाप्त कर इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी और तनाव को कम किया। इसके अगले 10 वर्षों में पूर्वी एशिया में शक्ति का संतुलन बना रहा। इतने अच्छे परिणामों के अतिरिक्त वाशिंगटन संधियों में कुछ कमियां व दोष भी थे। बड़े युद्ध पोतों पर तो पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन छोटे छोटे जहाजों के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया था। दूसरी कमी यह थी, संधियों के द्वारा चीन में सभी राष्ट्रों को समान अवसर दिया गया, लेकिन इस व्यस्तता को फिर से ध्यान देंगे, इस व्यवस्थता को क्रियान्वित करने का कोई भी उपाय नहीं निकाला गया। चीन में अभी भी महाशक्तियों के विशेषाधिकार बने रहे। यह इस संधि की सबसे बड़ी कमी थी कि जिस चीज को क्रियान्वित करने के लिए इन्होंने जो व्यवस्था बनाई, उसे क्रियान्वित करने के लिए इन्होंने कोई उपाय नहीं किए। चीन में अभी भी महाशक्तियों के विशेषाधिकार बने रहे। चीन की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता को कायम करने का आश्वासन मात्र जापान के प्रसार को रोकना था। यदि ऐसा नहीं होता, तो ये राष्ट्र चीन में प्राप्त अपने विशेषाधिकारों का अवश्य त्याग कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए चीन वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में स्थापित व्यवस्था से असंतुष्ट था। वाशिंगटन समझौता से जापान विशेष रूप से असंतुष्ट था। इस समय जापान नौसैनिक प्रतिस्पर्धा से बचना चाहता था, इसलिए उसने नौसेना पर लगाए गए प्रतिबंध को स्वीकार कर लिया। लेकिन जापान में ऐसे जंगखोरों की कमी नहीं थी जो इस संधि को अत्यंत अपमानजनक और अन्यायपूर्ण मानते थे। फिलहाल जापान ने विवश होकर इन बातों को मान लिया, लेकिन उसने दिल से कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया। जापान के इस प्रबल रोष का भीषण विस्फोट बाद में मंचूरिया और पर्ल हार्बर में हुआ। फिर से ध्यान देंगे, जापान के असंतुष्ट होने का और उसके प्रबल रोष का भीषण विस्फोट बाद में मंचूरिया और पर्ल हार्बर पर हुए उसके आक्रमणों के रूप में आया।